We'll do three omkars, Guru Pradhana and one Gayatri Mantra. परम पूज्य गुरुदेव के बारे में हम जितना जानने की कोशिश करते हैं, हमारी अपनी अनुभूति है कि हम डूबते चले जाते हैं और हमको कहीं पता नहीं चलता कि कहां जा रहा हूं। मैं काशी में पढ़ता था 8th क्लास से PhD तक, तो एक तरह से हमारी मातृभाषा हिंदी ही है, क्योंकि BSc की परीक्षा फिजिक्स और केमिस्ट्री भी हिंदी में ही लिखा था। तेलुगु तो मैं आंध्रा में जब गुरुजी ने हमें भगा दिया शांत कुंज से, वो कहा तुमको यहां नहीं रहना है, तुमको आंध्रा जाना है, तब हम तेलुगु सीखा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब मैं काशी में था तो हमारे दादाजी श्री रामकृष्ण परमहंस के बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए हमारे नाम के आगे भी उन्होंने श्री जोड़ दिया। तो अभी अगर तेजश्री ने कहा श्री रामकृष्णा तो ये करेक्ट नहीं कर रहे कि नाम के आगे श्री लगाओ, नाम में ही श्री है। और हमें तो गुरुजी हैं, जब मैं MSc फाइनल ईयर में था तब गुरुजी से मिला था, तब से वो हमको डॉक्टर RK कहते थे कि डॉक्टर RK तुम क्या कर रहे हो, हम तो गए हम MSc कर रहे हैं, तो कह डॉक्टर RK कहाँ से हो गए। तो बाद में पता चला डॉक्टर RK बनाने का एक ही मतलब था कि हमको आंध्रा भगाना है। जब मैं बचपन से काशी में था तो काफी बड़े बड़े दिग्गज आध्यात्मिक शास्त्रकारों से मिला, मैं जानबूझ के कह रहा हूँ शास्त्रकार, जैसे आनंद महिमा, वो जब भी काशी आती थी तो हमको बुला लेती थी अपने पास जब मैं BSc में था, और किनाराम बाबा आपने सुना ही होगा, और उसके बाद देवहरिया बाबा। देवरिया बाबा के बारे में आप एक बात याद रखिए कि वो हमेशा जो है सूर्य का नमस्कार जहां वो थे वहां से उत्तर की ओर मुड़ के करते थे और कहते थे हम सूरज को नमस्कार कर रहे हैं। तो लोगों को बहुत परेशानी होती थी कि उत्तर में और सूरज का नमस्कार, लेकिन 1990 जून 2 के बाद से उन्होंने उत्तर की ओर नहीं, पूरब की ओर करके ध्यान करना शुरू, नमस्कार करना शुरू किया। तो उन्होंने बताया अब तो सूरज फिर ऊपर चला गया। अब समझ रहे हैं किसके बारे में वो बता रहे, पूज्य गुरुदेव के बारे में। जब पूज्य गुरुदेव सशरीर थे तो उतने महावक्त जानते हैं, वो बाएं पैर से आशीर्वाद देते हैं। राजीव गांधी को भी उन्होंने अपने बाएं पैर से आशीर्वाद दिया, हाथ से नहीं। मैं इसलिए बता रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर लेवल के लोग भी उनके पास आते थे तो उनका बायां पैर अपने सर पे रखते थे। वो परम पूज्य गुरुदेव को सूरज का ही अंश, अंश नहीं सूरज ही वो कहा करते थे। और जब तक वो जमीन पे थे तो उनके लिए तो सूरज हरिद्वार में थे। तो ये हम लोगों के अनेकों जन्मों की अपनी श्रम कहिए या अपना भाग्य कहिए कि उनसे परिचय हुआ। लेकिन हम एक चीज हमेशा भूल जाते हैं कि गुरुदेव ने आध्यात्मिक जगत में केवल दो पग दिए हैं हमको, लेफ्ट राइट केवल दो चीज दी, एक गायत्री और दूसरा यज्ञ। जहां भी जाना हो हमको तो चलना ही पड़ता है। चाइनीज में एक कहावत है कि 3000 किलोमीटर भी जाना हो तो आप तो एक ही पग आगे बढ़ेंगे, बायां पैर फिर दायां पैर, बायां पैर फिर दायां पैर। अगर आप फ्लाइट में भी जाए, जहां भी जाए, तो पहला कदम तो उठाना ही होगा ना घर से बाहर जाने के लिए। तो गायत्री और यज्ञ आध्यात्मिक जगत के दो पांव हैं। और ओनली टू लेग्स, वी डोंट हैव अदर लेग्स। तो जहां कहीं भी हमको आध्यात्मिकता के बारे में जानना हो तो केवल इन्हीं दो चीजों से हम जान सकते हैं, एक गायत्री दूसरा यज्ञ। और ये यज्ञ के बारे में और गायत्री के बारे में गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कुछ बातें कहे जिसको हम याद नहीं रखते हैं। छंदसाम गायत्री, कृष्ण कहते हैं छंदस में हम गायत्री हूं और यज्ञों में जप यज्ञोस्मि। मैं फिर दोहराता हूं, मैं इसलिए दोहरा रहा हूं कि मेरे कहने के पहले मैं क्या कहने वाला हूं आप बोल दें, इसलिए मैं बता रहा हूं। एक चीज तो हमने कहा कि हमको आगे बढ़ना आध्यात्मिकता में तो दो चीजें चाहिए, एक गायत्री और यज्ञ। और ये गायत्री यज्ञ किस तरह से हमको समझना है, यह समझना है कि छंदस गायत्री है, छंदसाम हम आगे आ जाए। मैं पहले ही कह रहा था जितना आगे आ सकते हैं। द वॉइस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, यू आर एबल टू हियर? ओके 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 ओके, जय गए। और आगे आ जाए ना भाई, अगेन समबडी कम्स, बी एज नियर। आई होप आई एम नॉट सो डिस्टर्बिंग दैट यू डोंट वॉन्ट टू कम नियर टू मी। नो नो, इफ सच इज द प्रॉब्लम, ओके, इफ नॉट बी नियर, बिकॉज द मोर नियर यू आर द बेटर यू गेट इट, नॉट बिकॉज ऑफ द वॉइस, बट समथिंग हेल्स हैपेंस व्हेन वी आर टुगेदर, जिसको हम आरा कहते हैं। द नियर यू आर यू गेट मोर रिजल्ट, बट इफ पॉसिबल इट डिपेंड्स। तो मैं कह रहा था कि आध्यात्मिकता के लिए गुरुजी ने एक मिरेकल दिखाया, एक चमत्कार दिखाया, एक विज्ञान दिखाया। उन्होंने कहा आध्यात्मिकता की ओर जाना हो तो आपको यही दो कदम चुनना होगा, चाहे आध्यात्मिकता का मेरा मतलब है चाहे आप किसी भी मत के हों, किसी भी धर्म के हों, या नहीं कि आप क्रिश्चियन हैं कि मुस्लिम हैं कि सिख हैं कि जैन हैं कि बौद्ध हैं, जिस भी आपको करना हो आध्यात्मिकता के दिशा में आगे बढ़ना हो तो यही दो कदम हैं। तो इसलिए मैं इसको बार बार दोहराता हूं। और जब हम पूज्य गुरुदेव के साथ वो अपना क्लास चलाते थे, मुख्य रूप से एक जीवन देवता साधना वो बताया करते थे, एक कल्प साधना वो बताया करते थे, और उसमें जो प्राण प्रत्यावर्तन शिविर होता था तो उसमें हमेशा एक ही बात करते थे कि लोगों को आध्यात्मिकता के बारे में बड़ी गलतफहमियां हैं, बड़ी गलतफहमियां हैं। सबसे बड़ी गलतफहमी आध्यात्मिकता का, हम यह समझते हैं कि कर्मकांड कर लिए तो हम आध्यात्मिक हैं, पूजा कर लिए तो आप हिंदू हैं, नमाज पढ़ लिया तो आप मुस्लिम हैं, अगर चर्च जाते हैं तो आप क्रिश्चियन हैं, गुरुद्वारा जाते हैं तो आप सिख हैं। तो ये तो कर्मकांड हुआ। कर्मकांड का मतलब आप समझ रहे हैं ना, कि फिजिकल मूवमेंट ऑफ द बॉडी, नथिंग इज रिलेटेड विथ योर माइंड, आपका मन उसके साथ नहीं जुड़ता है। कर्मकांड में हमारा मन हमारे कर्मकांड के साथ नहीं जुड़ता है। मैं आपसे कहता हूं, आज तक किसी ने हमें यह नहीं पूछा कि पंचोपचार पूजा और षोडशोपचार पूजा में क्या अंतर, आज तक किसी ने नहीं पूछा और आप पूछे भी मत, इसलिए कि हमने ये प्रश्न उठाया तब आप पूछ रहे हैं। आज तक किसी ने यह बात नहीं कहा कि यह पंचोपचार पूजा क्या होता है और षोडशोपचार पूजा क्या होती है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम जो भी क्रिया करते हैं उस क्रिया के पीछे जो भाव होना चाहिए वो भाव नहीं होता। लेकिन जब साइंस में हम कोई क्रिया करते हैं तो उसके पीछे बहुत भाव होते हैं, बहुत थ्योरी होती है। और एज ए केमिस्ट्री लेक्चरर मैं बता सकता हूं कि मैं जितना केमिस्ट्री पढ़ाता हूं उससे कम प्रैक्टिकल कराते हैं, उतना समय नहीं मिलता है कि जितना मैंने पढ़ाया उतना प्रैक्टिकल करें। और कर्म निच कर्म प्रैक्टिकल है, तो संपूर्ण थ्योरी उस प्रैक्टिकल में नहीं आता, लेकिन थ्योरी को किस तरह आपको उपयोग करना है वो उस प्रैक्टिकल में आता है। तो हम दो कदम के बारे में बात करूं, ये हमेशा मैं इसलिए रिपीट करता हूं ना कि इतना हम आदि हो गए इन शब्दों के कि उन शब्दों का जो गुरुदेव ने एक नया स्वरूप दिया वो हम नहीं पकड़ पाते हैं। अब जैसे गायत्री और यज्ञ, ये दो कदम है। कदम क्यों? आगे बढ़ने के लिए। कहां कब हम आगे बढ़ते हैं? जब कोई लक्ष्य होता है। चलना हम तब शुरू करते हैं जब कोई लक्ष्य हो, कोई भी लक्ष्य हो, चाहे खाना हो तब भी आपको चलना पड़ेगा, खेलने जाना हो तब भी आपको चलना पड़ेगा, या कोई बहुत दूर जाना हो, बहुत बड़ी चीज पाना हो तब भी आपको चलना पड़ेगा। तो ये चलने का प्रक्रिया, आपका लक्ष्य कोई भी हो, एक ही है। मैं समझा सका इस बात को कि चलने का प्रक्रिया एक जैसा ही होता है, चाहे खेलने जाओ, चाहे खाने जाओ, या किसी से गप मारने जाओ, या किसी से सत्संग करने जाओ, या उन उन जगहों पे जाओ जहां परम पूज्य गुरुदेव जैसे लोग रहे हैं। तो सबके लिए आपको चलना है। कैसे चलोगे आध्यात्मिक जगत में? गायत्री और यज्ञ के द्वारा। ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तब आपकी गायत्री का और यज्ञ का आपके हाथ में एक नया साधन। कैसे साधन? लक्ष्य पहुंचने का साधन। तो गुरुजी कहा करते हैं कि गायत्री तीन लक्ष्यों को आपको देगी। वो अंतिम लक्ष्य के बारे में बता रहे हैं। फिजिकली आप पारसमणि पा जाएंगे। पारसमणि कहते हैं ना, परसुवेदी बोलेंगे कि पारसमणि बोलेंगे? पारसमणि, ठीक है। तो ये पारसमणि, चूंकि हम तेलुगु में उसको परसुवेदी बोलते हैं, इसलिए मैं कह रहा था कि शायद, तो आप समझ गए ना, भौतिक जगत में जिसे आप छूते हो सोना हो जाएगा, भौतिक जगत में। यह गायत्री का लक्ष्य है। गायत्री और यज्ञ का लक्ष्य, लक्ष्य का मतलब हम समझा सके ना, आपको गायत्री को उस तरह से उपयोग करना है जिस तरह आप चल रहे हैं लक्ष्य की ओर। तो भौतिक जगत में पारसमणि मिल जाएगा। और एक जगत हम भूल जाते हैं जिसको हम इमोशनल कहते हैं, भाव कहते हैं। और गुरुजी तो कहते हैं कि संपूर्ण आध्यात्मिकता जो है भाव संवेदनाओं की गंगोत्री है। अगर भाव संवेदना ना हो तो आध्यात्मिक जगत में तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो भाव संवेदना की गंगोत्री में आपको क्या मिलेगा? कल्पवृक्ष मिलेगा। कल्पवृक्ष जिसके नीचे बैठ के आपने कुछ भी सोचे हो जाएगा। तो जब मैं तो एमएससी पढ़ रहा था तो जरा मुंह फट था। ये मैंने सोचता था कि मैं किससे बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं। गुरुजी जब आप ये कहते हैं कि ये कल्पवृक्ष है गायत्री मंत्र और तुम जो सोचेगे वो मिल जाएगा, तो क्या जरूरत है ये पढ़ना उड़ना, बस गायत्री करते रहेंगे हो जाएगा। तो कह बेटा तुम एक चीज सोचो। उन्होंने एक उदाहरण दिया, यहां तो हमें नहीं मालूम उतनी गर्मी होती है कि नहीं, लेकिन आंध्र प्रदेश में केवल दो मौसम होते हैं, बहुत ज्यादा गर्मी और थोड़ा गर्मी। सब गर्मी ही गर्मी। और गर्मी के दिनों में तो बिल्कुल प्रचंड गर्मी होती है। तो उसका उदाहरण मैं दे रहा हूं, गुरुजी ने इस तरह का उदाहरण दिया, मैं जरा उसको आंध्रा की ओर मोड़ रहा हूं, चूंकि हमको भगा दिया उन्होंने आंध्रा ताकि मैं यहां आ सकूं। तो एक बहुत प्रचंड गर्मी जिस दिन था, बहुत तीव्र गर्मी जिस दिन था, एक आदमी एक शहर से दूसरे शहर जा रहा था। उसको नहीं मालूम कि उस रास्ते में एक पेड़ है जिसे कल्पवृक्ष कह सकते हैं। तो अनजाने में उस पेड़ के नीचे बैठ गया। वो बहुत गर्मी था, करत अगर ठंडा हवा लगता तो कल्पवृक्ष के नीचे बैठा था वो, ठंडा हवा शुरू हो गया। प्यास भी था तो क्या कहते, कोक। हाँ, तो उसने सोचा अगर कोक मिल जाता तो कितना अच्छा है। कोक आ गया। अब उसको लगा कि ये तो कुछ हो रहा है, तो कहा बढ़िया खाना मिल जाए, मिल गया। और बढ़िया खाने के बाद एक ही चीज बचता है, सोना। तो सोचा अगर बढ़िया पलंग मिल जाए तो सो जाऊंगा, तो पलंग मिल गया। और वो उसके बाद में बैठ के सोचा कहीं भूत तो नहीं जो हमको खा जाएगा। उदाहरण समझ में आया, हम समझते हैं कि कल्पवृक्ष मिल जाए तो अच्छा है, लेकिन बहुत डेंजरस है, क्योंकि अगर तुम्हें सोचने का ढंग ना आए तो कल्पवृक्ष तो आपके लिए खतरा ही बनेगा। तो कई आदमी हमसे पूछते हैं, तो एक उदाहरण दिए, हमने कहा उदाहरण मत सुनो, आज का साइंस देख लो तुमको समझ में आ जाएगा। साइंस कल्पवृक्ष ही तो है आजकल, लेकिन आज का विज्ञान अगर हम ढंग से सोचें तो संपूर्ण मानव जाति को समस्यामय बना दिया है। फैक्ट्रीज, जल और वायु का प्रदूषण, हमको जगह चाहिए, मकान बनाना है, ये बनाना है, तो पेड़ करते चले जा रहे हैं, खाने के लिए और मेडिकल रिसर्च के लिए पशु पक्षियों का तो इतना बेतरह से उनका जो है हम हत्या कर देते हैं। मुश्किल है कि एक्चुअली जब हम मेडिकल एंगल से सोचते हैं, इसको दोज हु आर रीडिंग मेडिसिन डोंट मिस्टेक मी, हाँ अगर मेरा कहना कुछ बुरा लगता हो तो भी वो एक तथ्य है, मानना ही पड़े। जैसे विविसेक्शन कहते हैं कि दवा निर्माण करना हो तो अनेकों अनेकों जानवरों को, खरगोशों को, चूहों को, सबको आप जो है उनका इतना तीव्र आप उसको पीड़ा देते हैं, इसलिए कि आपका दवा कैसे काम करता है। तो पता नहीं कितने हजारों लाखों को मारने के बाद आपको एक दवा निकलता है, और बाद में पता चलता है कि ये दवा तो उतना बढ़िया नहीं है, तो कुछ और दवा। तो हमारे रोगों के लिए जो कल्पवृक्ष देने वाला दवा है वो एक ऐसी समस्या क्रिएट कर रही है। और सबसे बड़ी गलती ये हो रही है कि लोगों की दौड़ शहर की ओर जा रही है, गांव में कोई नहीं रहना चाहता, सब शहर की ओर जाना चाहते हैं। हमें तो यहां की बात नहीं मालूम, भारत की बात तो बिल्कुल सही बात है। और शहर की ओर क्यों भाग रहे हैं, क्योंकि वहां काम मिल जाता है। काम किस तरह का मिलता है, जैसा भी काम हो, लेकिन वह काम ऐसा नहीं है जो हमको खाना दे सके। खेत वो सब काम तो नहीं हो सकता ना, वहां एग्रीकल्चरल काम तो नहीं हो सकता। तो जितने हम सुख सामग्री विज्ञान से मैं पा रहे हैं, सभी पा रहे हैं, इस समय भी मैं बोल रहा हूं और आप सुन पा रहे हैं, तो बिकॉज ऑफ साइंस, इसकी कमी नहीं मैं बोल रहा हूं। सोचने का ढंग हम भूल गए हैं, तो कल्पवृक्ष जो है समस्या प्रदान कर रहे, ये मैं बता रहा हूं, विज्ञान को मैं दोष नहीं दे रहा हूं। लेकिन यहां क्या बात हो रही है वो याद रखो, मैं बता रहा हूं दो कदम के बारे में, एक कदम जो गायत्री से उठता है, दूसरा कदम जो यज्ञ से उठता है। तो कृष्ण ने क्या कहा कि एक छंदस में मैं गायत्री हूं, और गायत्री में तीन शब्द आते हैं, चाहे किसी भी देवता का आप गायत्री मंत्र सोचें, सुने या बोलें, विद्महे धीमहि प्रचोदयात, निश्चित रूप से ये तीन पद आते हैं, विद्महे जान रहा हूं, धीमहे मैं धारण कर रहा हूं, प्रचोदयात एक्शन में ला रहा हूं। जब यह आप कर सकते हैं किसी भी चीज के बारे में, जब आप जान सकते हैं विद्महे, उसके बाद जानने से काम नहीं चलेगा, वो तुम्हारे दिमाग में धारण हो जाना चाहिए। धारण होने का मतलब वो ऑटोमेटिकली तुम करोगे। अब जैसे आपने जाना कि आग में अंगुली गई तो जलेगा, ये तो आपने विद्महे है, लेकिन अगर कभी आपने उसका असर देखा फिजिकली कि हमने हाथ रखा जला उस दिन, ये धारण हुआ धीम ही। अंतर समझा दोनों में? तो एक विद्महे मींस हमने जाना, लेकिन जो चीज आपने जाना वो हमारे दिमाग में नहीं है, हमारे अनुभव में नहीं है। तो जो हम जानते हैं अगर वो हमारे अनुभव में आ जाए तो फिर दोबारा वो गलती नहीं होगी, निश्चित रूप से नहीं होगी। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूं, तो विद्महे मात्र है, धीमे ही नहीं हुआ। ये अंतर आपको समझना है गायत्री मंत्र के द्वारा कैसे कदम आगे बढ़ते हैं। तो विद्महे पर मत रुकना, वो धीमे ही होना चाहिए, वो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाना चाहिए। लेकिन अगर बैठ भी गया, अगर आपने आचरण नहीं किया तो भी बेकार है, प्रचोदयात। तो ये तीन चीज आपके अपने नित्य जीवन में भी अगर आपको कुछ पाना है तो ये तीनों स्टेप जरूरी है कि नहीं? ऐसा कोई भी आप चीज सोच सकते हैं? अब जैसे एक उदाहरण हम दे सकते हैं कि एक बहुत बड़ा ब्रेन सर्जन अमेरिका से आया, बहुत बड़ा ब्रेन सर्जन, लोगों ने एक ऑपरेशन थिएटर भी उसके लिए बुक किया और पेशेंट भी रेडी है, लेकिन ऑपरेशन थिएटर में इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, तो क्या कर सकेगा ब्रेन सर्जन? कुछ नहीं कर पाएगा। ये प्रचोदयात वाली में बात बताया, क्योंकि जब आप प्रचोदयात की ओर जाएंगे तो आपको इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, उपकरण चाहिए। अगर आप साइंटिफिक वे में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको एक प्रयोगशाला चाहिए। तो एक साधारण से दवा खोजने के लिए कितना बड़ा प्रयोगशाला लगाते हैं हम, कितने आदमी लगते हैं, और हम इतना बड़ा आध्यात्मिक सफर में निकलने के लिए हम कदम बढ़ा रहे हैं गायत्री और यज्ञ के माध्यम से, तो प्रयोगशाला कहाँ है? तो अब हम प्रयोगशाला ढूंढें, कहाँ बनाएं प्रयोगशाला? आप कोई सर कहेंगे कहाँ बनवाएं? जब बात उठी गई है तो हम बात कर लें, प्रयोगशाला की जरूरत तो समझ गए ना, तो कहाँ बनाएं? न्यू जर्सी में या न्यूयॉर्क में? आप समझिए, आपका शरीर ही प्रयोगशाला है, बना बनाया प्रयोगशाला है, प्रयोगशाला बनाने की कोई जरूरत नहीं। और जितने साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स बन रहे हैं वो सब इस प्रयोगशाला को ही देख के बन रहे हैं। तो एक जगह तो हमने पढ़ा, एक हमें याद नहीं आ रहा, एक नोबेल प्राइज विनर है वो, ठीक नाम जो भी हो, उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी यंत्र का निर्माण नहीं हो सकता जो मानव शरीर में नहीं है। अगर मानव शरीर में वो यंत्र ना हो तो भौतिक जगत में वो यंत्र नहीं बन सकता। टेलीफोन, कैमरा, आपका जो पीसने का मशीन और तरह तरह के सब यहां है, और आजकल का कंप्यूटर, बिगेस्ट कंप्यूटर। तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि आप कंप्यूटर के बारे में रिसर्च करना चाहते हैं तो आजकल का जितने कंप्यूटर हैं वो दिमाग के सामने कितने हैं? कुछ नहीं। अगर दिमाग का कंप्यूटर आपने जगा सके, दिमाग का कंप्यूटर रूपी यंत्र अगर आपने जगा सका, तो जगाने के लिए क्या चाहिए? पहले तो यह मालूम हो कि यह कंप्यूटर है, विद्मय है। और उसके बाद क्या होना चाहिए? जो कंप्यूटर का जो धारणा होनी चाहिए, कंप्यूटर के बारे में आप जो एक्टिविटीज लेते हैं वो दिमाग में उतरना है, और उसके बाद डू इट, प्रचोदयात। लेकिन इस स्टेप को लेने के लिए यज्ञ जरूरी है। अब कई लोग आके कहते हैं कि भाई यज्ञ सिखाओ, कैसे करना है? वहां भगवद गीता में अगेन कृष्ण कहते हैं, सह यज्ञा प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविश्वध्वम एशवो स्त्विष्ट कामधुक। कामधुक मतलब आप जो कामना है, आप जैसे गाय के थनु से आप दूध क्या कहते हैं उसको दूहते हैं ना, उसी तरह आप यज्ञ से आपके हर कामना दो सकते हैं। लेकिन यह यज्ञ प्रक्रिया तुम्हारे साथ ही उत्पन्न हुआ है, सह यज्ञ आप उत्पन्न ही हुए, आप पैदा ही गायत्री और यज्ञ के स्टेप के द्वारा ही मां के गर्भ से बाहर आए। यह साइंस हम भूल गए, यह विज्ञान हम भूल गए। तो यह विज्ञान का चमत्कार और इसकी विशालता आप समझ रहे हैं गुरु जी का। तो गुरुदेव से बड़ा साइंटिस्ट हमारे समझ से तो कोई हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। अगर भौतिक शरीरधारी आदमी को किसी भी एरिया में किसी भी विषय के बारे में मार्ग को देखना हो तो यही तो दो कदम उठाना है, गायत्री और यज्ञ, वो दोनों हमारे हाथ में थमा दिया। ठीक, तो इस गायत्री के बारे में और यज्ञ के बारे में समझने के लिए, गायत्री तो हमने बता दिया, विद्महे धीमहि प्रचोदयात्। विद्महे मतलब जानना, लेकिन गायत्री मंत्र में विद्महे नहीं है, जो हम गायत्री मंत्र करते हैं उसमें विद्मय नहीं है, है ना। इसलिए नहीं है कि तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं, जो जानता उसे पूछ लो। ये संपूर्ण सृष्टि का निर्माण कौन कर रहा है? सूरज। अगर सूरज से अगर आपका संबंध जुड़ गया तो आपको विद्मय कुछ करने का, वो जैसा करता है वैसे करो, इसी को गुरु जी कहा करते थे समर्पण। तो इसलिए विद्मय नहीं है वहां पे। तो यह मत समझना कि गायत्री मंत्र की कमी है, यह गायत्री मंत्र की विशालता है, जहां विद्महे की कोई जरूरत ही नहीं। बस एक ही चीज है, समर्पण। तो यह समर्पण की टेक्निक गायत्री की साधना है, यह समझना हमको पहले है कि हमको समर्पित हुए कि नहीं, हमने समर्पण किया कि नहीं। बोलने से नहीं, आपके जो काम हम करते हैं उसमें हम कितने समर्पित हैं। अगर आप पूर्ण रूप से समर्पित हैं उस ज्ञान को, तो एक चीज की गारंटी है कि आपके ऊपर विश्वास हो जाएगा कि आप जो कहते हैं वो कर सकते हैं। मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूं, फिर उदाहरण दूंगा। अगर आपका समर्पण के बारे में विश्वास हो गया लोगों को कि ये चीज कर सकता है, समर्पण का मतलब तो ये ना कि ये इस दिशा में कर सकता है, तो अगर यह इस दिशा में यह आदमी कर सकता है इस बात का विश्वास हो जाए तो सब लोग जो हैं सहायता देना शुरू कर देते हैं। उदाहरण के लिए कैंसर की रिसर्च में बात कर रहा हूं, इसलिए मैं बात कर रहा हूं कि जितना हम लोग उसके बारे में बात करेंगे उतनी जल्दी कैंसर की दवा मिलेगी, इसलिए मैं उसी का उदाहरण देता हूं। तो कैंसर की दवा खोजने के लिए मैं जाके कहूं, हम फिजिकल केमिस्ट्री में पीएचडी हूं, मैं चाहता हूं कि कैंसर के दवा के लिए रिसर्च करूं, लोग मानेंगे? मैं हूं फिजिकल केमिस्ट्री, आई एम नॉट बायोकेमिस्ट्री। तो कहेंगे अच्छा आप डॉक्टर हैं, आप पीएचडी हैं, तो ठीक है तुम करो, हम फंड देते हैं। देगा कोई? मुझको देगा? नहीं देगा। किसको देगा? बायोकेमिस्ट्री विद महे को देगा। भाव हम समझा सके मैं क्या कहना चाहता हूं? तो आपका विद्महे के बारे में उसको विश्वास होना है कि आपने क्या जाना। आज तो किसी को भी नहीं मालूम कि कैंसर की दवा क्या है, लेकिन विद्महे लोगों को कितना फंड दे रहा है, गवर्नमेंट देती है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस देते हैं करोड़ों करोड़ों डॉलर्स, उन लोगों को देगा जो विद्महे है। लेकिन विद्महे का प्रूफ क्या है? धीमहि, उसका आचरण, उसका प्रयोग, उस दिशा में आगे बढ़ रहे। आज तक उस दिशा में कोई सफल फल नहीं मिले, लेकिन फिर भी सहायता उन्हीं को मिलती है जिसको विद्महे और धीमहि हो, और उस दिशा में नहा प्रचोदयात। नहा मतलब वही, यहां हम का मतलब गायत्री परिवार नहीं, हम का मतलब मानवता, सभी मानव, ह्यूमैनिटी के बारे में जब हम सोच के आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं तो अपने आप आपको सब मिलना शुरू हो जाता है। सब मिलना शुरू हो जाता है। हम समझा सके मैं क्या बताना चाहता हूं कि इसलिए आप यह सोचिए मत कि हम कर नहीं पा रहे हैं, हमें कोई नहीं आ रहा है। क्यों हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं कि तीन चीज हम भूल जाते हैं कि हमने क्या वास्तव में समझा कि क्या चाहते हैं गुरु जी। तो वास्तव में चाहने के लिए गुरु जी के बारे में एक प्रॉब्लम है कि उन्होंने कुछ ज्यादा किताबें लिख दिया है, जितने संस्कृत के किताबें हैं उन सबको जो है ट्रांसलेशन कर दिया, इसलिए कि लोगों को आजकल संस्कृत नहीं आता है। तो 108 उपनिषद, 24 स्मृतियां, 24 गीताएं, वेद व्यास जी ने जो कुछ लिखा वो, और पतंजलि ने जो लिखा, जितने भी ऋषियों ने जो भी लिखा आयुर्वेद के बारे में, इसके बारे में, जो कुछ भी संस्कृत में, उसको ट्रांसलेशन करके एक तरफ रख दिया। इसी में तुम सोचो कि गायत्री का शक्ति कितनी है कि किताब आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के लिए आपको जो है नाखून चने चबाना कि नहीं, और उन्होंने इतने किताबों को ट्रांसलेशन किया। मैं क्रिटिसिज्म के बारे में नहीं बता, मैं इसलिए बता रहा हूं कि उनकी विशालता को समझो जिसको मैं समर्पित हो रहा हूं। अगर समर्पित हो गए तो आपकी समस्या हल होगी, इसलिए मैं समझा रहा हूं। फिर आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है कि आपको क्या करना है, आप समर्पित हो गया तो वो तो उनका सर दर्द है कि हमसे क्या कराना है। अगर ये बात मैं कह सकूं लेकिन शायद हम सब लोग सर दर्द है उनके लिए, वो दूसरी बात है। तो ये समर्पण के बारे में जब लोगों को किताबें ट्रांसलेशन करने के बाद भी नहीं आया तो उन्होंने 3200 से ऊपर अपनी किताबें लिखी, नो ट्रांसलेशन। अब आप सोच लीजिए 3200 किताबें लिखने के लिए कितना समय की जरूरत है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि गुरुजी क्या चाहते हैं जानने के लिए आपको इतनी किताबें पढ़नी है। मैं शायद डरा रहा हूं आपको लेकिन मैं कर क्या सकता हूं, उन्होंने इतना लिखा तो आपको पढ़ना ही होगा, उसके बिना कैसे पता चलेगा वो कहां ले जा रहे हैं, है ना। और 3200 किताबें लिखने के बाद उन्होंने एक बवाल और हम लोगों के ऊपर लिख दिया, युग निर्माण योजना मैगजीन और अखंड ज्योति मैगजीन, हर महीने में 64 पेज। अब 64 पेज वही लिखते थे सब, 2000 तक तो हर पन्ना जो है उनका लिखा हुआ है। हाँ, अब जब जरा 64 पेज लिखे तो दिखाइए आप एक बार। ऐसा नहीं कि उन्होंने 80 साल जिए तो उसमें पहला 24 साल तो आप छोड़ दीजिए, उसके बाद से तो उन्होंने लिखना शुरू किया मैगजीन, हर महीने मैगजीन चल निकालना, 64 पेज युग निर्माण योजना का, 64 पेज अखंड ज्योति का, तो एक किताब से ज्यादा हो जाएगा। और उनको हर महीने लिखना है तो उसको भी पढ़ना है आपको सत्संग में। तो हमने, मैं समझ रहा हूं कि हमने काफी डरा दिया कि नहीं, कि आपको कितना पढ़ना है। मैं इस... अच्छा नहीं, तब 84 में इन्होंने एक विशेष साधना किया जिसको दुनिया का किसी भी आध्यात्मिक वेत्ता किसी भी जगह नहीं किया, जिसको हम पंच वीरभद्र साधना कहते। केवल एक बार कहते हैं गुरुजी एक बार कि कुंती देव ने किया पंच, उसके बाद किसी ने यह साधना किसी ने नहीं किया। तो वो साधना करने के पहले उनको पता चला कि हमने रामकृष्णा को आंध्रा भेजा, वो जरूर यहां आके बोलेगा न्यूयॉर्क में, डरा देगा लोगों को कि इतना पढ़ना है विद्वय के लिए। तो उन्होंने पहले ही हमारे के लिए, हमको जो है ना, आपको ना डरा इसके लिए, उन्होंने एक टेक्निक निकाला कि उन्होंने केवल 20 छोटी छोटी किताबें लिखी, केवल 20 छोटी छोटी किताबें, और उन्हीं के शब्द हैं कि हमारा सारा वांग्मय एक तरफ और हमारे 20 किताबें, किताबें नहीं है तो बुकलेट है, कहां किताब का नाम दे सकते हैं। अगर निश्चित रूप से हम समझें तो एल्स्टर मैकलिन और इरविंग वैलेस के नॉवेल का 8वां हिस्सा भी नहीं होंगे, 20ों को मिला दें, उतनी छोटी किताब। और उन्होंने कहा कि ये 20 किताबें काफी हैं, हमारे सारे वांग्मय एक तरफ, अगर इन 20 किताबों को उनसे तुलना करेंगे आप तो ये भारी पढ़ेंगे। कितना आराम हो गया ना, ये गायत्री का कल्पवृक्ष है कि इतना नहीं पढ़ना है आपको, विद्मय के लिए 20 किताब काफी है। लेकिन इनको पढ़ना है, अध्ययन करना है, और इसके बाद आपको किस तरह उसका उपयोग करना है ये जानना है। लेकिन 20 किताबें, छोटी सी बुकलेट्स पढ़ के क्या करना सीखने के लिए क्या परेशानी। तो ये गायत्री के बारे में बता रहा हूं, ज्ञान के बारे में, सद्बुद्धि के बारे में। गुरुदेव ने इतना काम करने के बाद, इतना इतना किताबें लिखने के बाद, उन्होंने कहा कि बस ये काफी है। और उन्होंने कहा, और उनको मालूम है कि क्या कह रहे हैं, जब उन्होंने कहा कि हमारा सारा वांग्मय एक तरफ और ये 20 किताबें एक तरफ, तो आपको समर्पण है तो आपको 20 किताबों से ही समर्पित होना है, उसके आगे नहीं जाना है। इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं कि आगे मत जाओ। अगर ये समझ लोगे तो एक विचित्र बात तुम्हारे समझ में आएगा कि जितने भी साइकोलॉजिकल, पैरासाइकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, साइंटिफिक जितने भी किताबें आप पढ़ेंगे, आपको लगेगा ये तो गुरुजी ने बताया उस किताब में, तो वो इट इज ए फार्मूला, फार्मूला ऑफ ऑल नॉलेज। तो कई लोग हमसे पूछते हैं एक बार कि आप कहते देते हैं कि 20 किताबों में सारा ज्ञान का निचोड़ वहां पे है, तो अगेन हम फिर वापस आते हैं कि अपने शरीर पे, प्रयोगशाला शरीर है ये, मैंने पर उस बारे में बता रहे हैं, ये याद रखिएगा हम क्या कह रहे हैं। जब मैं शरीर के बारे में बता रहा हूं तो मैं प्रयोगशाला के बारे में बता रहा हूं। तो पांच तरह के प्रयोग दुनिया में होते हैं। एक तो पॉलिटिकल प्रयोग, अपना शरीर को वो पॉलिटिक्स में लगाते हैं और वो चाहते हैं कि आगे बढ़े। दूसरा प्रयोग बिजनेस, कई शरीर इस तरह का प्रयोग होता है, लोग कहते हैं अगर उसका उसने हाथ लगाया तो मिट्टी भी सोना हो जाता है बिजनेस में। तीसरा प्रयोग साइंटिस्ट्स, चौथा प्रयोग एक्टर्स, कलाकार। ये मैंने कहा था केवल एक्ट करना फिल्म में, इन्हीं कलाकारिता जहां भी हो। और पांचवा है टीचर्स। तो कोई भी किताब दुनिया में हो, इन्हीं के बारे में तो होगा ना। अगर आप नॉवेल पढ़ते हैं तो वो कलाकार की बात हुई, कोई साइंस की किताबें पढ़ते हो तो साइंटिस्ट की किताब के बारे में बात, पॉलिटिशियंस या पॉलिटिक्स या राजनीति के बारे में कोई किताब पढ़ते हैं तो वो पॉलिटिशियंस के लिए लिखा हुआ किताब हो। तो ये पांच तरह के प्रयोग हमने आपको कंफ्यूज तो नहीं कर रहा हूं ना, जब मैंने कहा प्रयोग, आप अपना शरीर को एज ए पॉलिटिशियन प्रयोग कर सकते हैं, एज ए बिजनेसमैन आप प्रयोग कर सकते हैं, एज ए साइंटिस्ट आप प्रयोग कर सकते हैं, एज ए कलाकार आप प्रयोग कर सकते हैं, एज ए टीचर आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इनको कहां ले जाना है, इन प्रयोगशालाओं के लिए हमें क्या देना है। तो हर प्रयोगशाला के पास चार तरह के सोचने के ढंग है, जिसको मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार कहते हैं। तो पांच प्रयोगशालाओं में ये चारों लेवल्स काम करते हैं, है ना। तो 5 × 4 = 20, सो दीज 20 बुक्स गिव यू गाइडेंस इन ऑल फील्ड्स ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग आपका मनो, बुद्धि, चित्त, अहंकार। सो दिस इज द वे इन विच यू हैव टू रीड। दैट इज व्हाई आई ऑलवेज टेल नाउडेज माय फ्रेंड्स that you read these books, study these books with this process. What is the process? Vidmahe, dhimahe, prachodayat. A politician ka dhimahe dusra tarah se hoga, wahi kitab. Businessman ka sochne ka dhang dhimahe dusre tarah se hoga. To Pujya Gurudev ne apni sadhana se अपने आप के पांचों शरीर को उन्होंने क्या कहते हैं गलित करके, डिसॉल्व करके, भाव समझ में आना, अपने आप को उन्होंने जो है रिडिसॉल्व इनटू दीज 5 लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस, एज ए पॉलिटिशियन, एज ए बिजनेसमैन, एज ए साइंटिस्ट, एज एन एक्टर, एज ए कलाकार एंड एज ए टीचर। And now he guarantees that whoever reads this book, वो विश्व नेता बनेगा, because he will get all the politicians if you go into that field. If you go into the business, you will control the entire business. लेकिन ये याद रखिएगा, अगर हम पढ़ लिया तो हो जाएगा, नहीं, आपको कदम उठाना है गायत्री और यज्ञ के द्वारा, ये याद रखना। कदम तो वही है, ज्ञान उन्होंने दे दिया, कदम तो आपको ही उठाना है। अगर बायोकेमिस्ट्री में आपको कुछ सीखना हो तो वो किताब में तो है, लेकिन उस किताब को पढ़ना है, फिर उसको धारण करना है, और उसके बाद कंबाइंड रूप से उसको आचरण में लाना है। तो ये 20 किताबों का ज्ञान जो हमारे मन बुद्धि चित्त और अहंकार में उतरे, तो 5 × 4 द 20 बुक्स। तो फर्स्ट 4 बुक्स कंट्रोल योर वे टुवर्ड्स थिंकिंग। जब हम आज के साइंटिस्ट के बारे में और इन जनरल इंटेलेक्चुअल पीपल के बोलने के ढंग से ऐसा लगता है जैसे हम एक प्रलय के कगार पे हैं। लकी चीज है, हम सोचते नहीं, नहीं तो अब तक तो हम डर गए होते। कभी हम डरते ही नहीं, वो दूसरी बात है। नहीं तो जब कभी हम यहां, तो अब आज तक ऐसा वातावरण नहीं मिला जैसे हैदराबाद में, दिल्ली में, बेंगलुरु में। जब मैं रास्ते में निकलता हूं तो हमको सांस लेने में डर लगता है, क्या ऐसा पोल्यूटेड एयर, हम कैसे सांस तो लेना ही होगा, लेकिन डर लगता है। लेता भी हूं और जाता भी हूं लेकिन इसलिए जाता हूं कि बता सकूं, कि लोगों को डरा सकूं कि भैया कुछ करो पोल्यूशन को ठीक करने के लिए। तो परम पूज्य गुरुदेव का यह जो प्रयोग है कि आपका मन किस तरह होना है, आपका बुद्धि किस तरह होना है, आपका अहंकार किस तरह होना है, आपका चित्त किस तरह होना है। तो आजकल का एजुकेशन सिस्टम तो ऐसा हो गया कि बुद्धि के बारे में तो कोई बताता ही नहीं। बुद्धि का मतलब आप कुछ डेफिनेशन से याद रखिए, मन एकत्रित करता है, इट इज लाइक ए लाइब्रेरियन। लाइब्रेरियन बैठा है और लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरियन के से आप किसी भी किताब के बारे में पूछिए, वो निकाल के दे देगा, भले वो पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। और ज्यादातर लाइब्रेरियंस लाइब्रेरी की कोई किताब नहीं पढ़ते हैं वो जानते हैं कि इट इज देयर। तो आजकल हमारा मन जो है एक लाइब्रेरियन है, आपको सब जो है दिमाग के अंदर जा रहा है, ये पोल्यूशन है, पॉलिटिशियंस के बारे में जो है देश के लिए या समाज के लिए कुछ करने की इच्छा नहीं है, और बिजनेसमैन ये नहीं सोचता कि आपके लिए क्या करना है। अगर आपको कुछ बेचना चाहे तो पहले आपको जो बेचना चाहे उसके बारे में रुचि कर, उसके बाद फिर उसको बेचना शुरू कर दे। और एक्टर्स, भगवान जाने वो क्या एक्ट कर रहे हैं, उनके एक्टिंग के बारे में ऐसा कोई भी इच्छा हमको नहीं दिखती कि कुछ समाज को दें। और राइटर्स, ये नॉवेलिस्ट या जो कुछ भी लिखते हो, समझ रहे हैं ना, तो एकत्रित हो रहा मन में। लेकिन बुद्धि का मतलब है आप क्या संकल्प होते हैं, क्या संकल्पित होते हैं कि हम इस ज्ञान को इस तरह से उपयोग करते हैं। तो गुरु जी एक उदाहरण दिया करते थे कि एक पार्क में कुछ लोग गए, एक आर्टिस्ट गया, एक साइंटिस्ट गया। तो आर्टिस्ट रंगों के बारे में सोचेगा, साइंटिस्ट रंगों के पीछे जो है उसके बारे में सोचेगा। तो बुद्धि का अंतर समझ में आया ना, ज्ञान तो एक ही आ रहा है कि इस तरह के पेड़ हैं और इस रंग के पेड़ हैं। मन तो एक ही चीज देखा कि इस तरह के पेड़ और इस तरह के फूल हैं, लेकिन बुद्धि आर्टिस्ट की दूसरी तरह काम करेगी, साइंटिस्ट की दूसरी तरह काम करेगी। तो यह सोचने का ढंग मन को बुद्धि के बारे में, बुद्धि अहंकार के रूप में परिणित हो और वो चित्त के रूप में परिणित हो। तो ये विज्ञान को उन्होंने एक छोटी सी किताब में दिया है, क्रांति धर्मी साहित्य में, मनस्थिति बदले तो परिस्थिति बदले। तो इस चीज को अगर आज मैं इसी के बारे में जोर देके बोलूंगा, क्योंकि अगर हमारा मन बदल गया तो परिस्थितियां बदल जाएंगी, इससे बड़ा कल्पुरुष आपको कहां मिलेगा कि आपने मन बदल दिया और परिस्थिति बदल गया। और गुरुजी एक चीज और बताते हैं, हमने तो सब बदल दिया, पांचों जो लेवल्स है ना, पॉलिटिशियंस के बारे में किस तरह के पॉलिटिशियंस चाहिए हमने फिक्स कर दिया है, किस तरह के बिजनेसमैन होना चाहिए हमने फिक्स कर दिया है कल्पना में। कल्पना का मतलब ये मत सोचो कि कोरी कल्पना है, वो गुरु जी की कल्पना है, ऑथेंटिक कल्पना। साइंटिस्ट किस तरह के होने, कलाकार किस तरह के होने, लेखक किस तरह के होने, बस तुमको इतना ही करना है, उसको उतार लो। किस तरह उतारोगे, मनस्थिति बदले। कौन सा नंबर है वो किताब क्रांतिधर्मी साहित्य में, हमने कहा था ना वो लिस्ट हमेशा याद रखे। यू प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट, एंड व्हेन आई से कॉन्सेंट्रेट, हमने पढ़ के बगल में नहीं रखना है। अगर आपकी मनस्थिति बदली है और उसके अनुसार बुक नंबर 12, अजीब नंबर है, महाकाल का नंबर है, 12 वर्ष 12 साल, वो हर चीज वो ढंग से लिखे हैं सब। तो जिस तरह का हमारा मन होता है उस तरह की परिस्थितियां बनती हैं। अब हम इंजीनियर होना चाहते हैं पढ़ते वक्त, तो परिस्थितियां उस तरह की बनती कि नहीं बनती है? जरूर बनती है। कंडीशन ये है कि वो मन में वो इच्छा कंटिन्यू करे, है कि नहीं? मेरा भाव समझ में आया? आप जो भी चाहें वो परिस्थिति आएगी, लेकिन वो परिस्थिति लाने के लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। तो अब तक तो हमने गायत्री के बारे में बताया, अब मैं यज्ञ के बारे में बता रहा हूं। तो ये प्रयत्न का आप कैसे करेंगे? तो हर प्रयत्न में आपको तीन चीजों से, क्या कहते हैं उसको, छूटना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, दान देना पड़ेगा। तीन चीज, जैसे सिनेमा देना चाहते हैं, ये आपकी कल्पना है, इच्छा है। तो आपकी परिस्थिति कहां से कहां जाना है? घर से सिनेमा हॉल में आपको रहना है। परिस्थिति बदला कि नहीं? लेकिन ये परिस्थिति कब बदलेगी? पहले तो आप डिसाइड करें कौन सा सिनेमा जाना है। उसी में कई बार हमें तो नहीं मालूम यहां क्या होता है, लेकिन हमारे घर में तो 3 दिन तो झगड़ा होता रहेगा कि किस हाल में जाना है, कि ये सिनेमा देखना है कि वो सिनेमा देखना है, उसका हीरो कुछ, इसका हीरोइन किसी को अच्छा लगता है। अब इसी में मन में झगड़ा हो रहा है कि कहां जाना है। ठीक, तो पहले तो आपने निश्चित किया कि हमको वहां जाना है, उस सिनेमा हॉल में जाना है। सिनेमा हॉल गए, अब पर्स भूल के गए, तब क्या होगा? वापस आना होगा, टिकट नहीं खरीद सकते। तो कुछ धन से मुक्ति पाना है। और सबसे बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपके जीवन से 3 घंटे के लिए आपको छुट्टी लेनी है। 3 घंटे का अगर समय नहीं दिया तो आप क्या सिनेमा देखें, है ना? तो ये जो दान देने की प्रक्रिया, पहला दान किसमें, 5-6 पिक्चर आपको देखना है तो एक ही पिक्चर को आप चुन सकते हैं, तो एक दान तो वहां हुआ। दूसरा दान, तीसरा दान समय है ना? तो समय दान, अंश दान, प्रतिभा दान, यह यज्ञ की प्रक्रिया। यज्ञ मतलब सैक्रिफाइस, इंग्लिश ट्रांसलेशन ही है सैक्रिफाइस। यज्ञ को हम जब इंग्लिश में बोलना चाहें तो सैक्रिफाइस ही कहते हैं। सैक्रिफाइस मतलब त्याग करना। त्याग करते हैं कि नहीं आपको? तो यह मत समझिए कि केवल आपके गुरुजी के काम करने के लिए आपको प्रतिभा दान देना होगा और अंश दान देना होगा या समय दान देना होगा। यह एक प्रक्रिया है। तो जहां ये तीन प्रक्रिया मिलती है उसको यज्ञ कहते हैं। तो यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि। जप को अगर आपने यज्ञ के रूप में परिणित किया, अब गायत्री मंत्र का जप अगर यज्ञ बना सके आप, भाव का अंतर समझ में आया? गायत्री मंत्र तो आपने किया, लेकिन उस गायत्री मंत्र के साथ आपका प्रतिभा कुछ समाज को जा रहा है, आपकी आमदनी कुछ समाज को जा रहा है, अंशदान आपका कुछ समय समाज को दे रहे हैं। और 20वीं किताब का नाम जरा पढ़ना, समय दान ही धर्म है। ये गुरुजी जो हैं इंसिस्ट करते हैं, गुरुजी क्या चाहते हैं, क्या पूछते हैं, ना आपकी प्रतिभा के बारे में पूछते हैं, ना वो आपके अंश के बारे में पूछते हैं। अंश का मतलब धन के बारे में। वो कहते तुम समय दो, तुम अपना समय दो उसके लिए, समय दान। तो कहते मैं कहां समय दे सकता हूं? मैं कहता हूं आप टीवी देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, वही समय दे दो, कोई अलग से ज्यादा समय नहीं देना है। आप जो टीवी देखने का समय है, अगर आप 3 घंटे देखते हो तो 2.5 घंटे देख के आधा घंटा गुरुजी के काम के लिए दे दो, तब भी वो समयदान हो गया। तो उन गुरुजी की किताबों के डेप्थ के बारे में मैं बता रहा हूं, दो किताबों के बारे में मैं अभी चर्चा कर रहा हूं। एक मनस्थिति बदले तो परिस्थिति बदले। मनस्थिति का मतलब सिनेमा देखना हो तो आपके ये प्रखर प्रतिभादान, समयदान और अंशदान अलग तरीके से खर्च होते हैं। कॉलेज जाना हो तो वही काम करना है आपको, लेकिन कुछ अलग तरह से, समझ में आ गया ना? तो मनस्थिति बदलना ही मेन चीज है जो संपूर्ण हर क्रियाकलाप को नियंत्रण करता है। तो मनस्थिति हमें कैसे बदलना है, तो गुरुजी ने 3 ध्यान दिया है, अगर जो कर सकें वो निश्चित रूप से करें। सुबह 3 शरीरों का ध्यान उन्होंने कहा है। तो 3 शरीरों का क्या ध्यान है, हमारा प्रयोगशाला है तो हर प्रयोगशाला के लिए ये 3 ईंधन, ईंधन ही कहते हैं ना, एनर्जी फ्यूल, 3। एक जो तो पेट के लिए खाना चाहिए, हृदय के लिए भाव चाहिए, दिमाग के लिए ज्ञान चाहिए। यही प्रयोगशाला है। जैसे हमारे विचार, जैसे हमारे भाव, जैसे हमारा खाना। ये जरूर याद रखिए कि हम परम पूज्य गुरुदेव एक कल्प साधना कराते थे 1 महीने के लिए। आपको मालूम है वो कल्प साधना, सुना है ना? खाना बदलते थे और माता जी कल्क देती थी, याद आ रहा ना? तो उसको कंटिन्यू करना है। आपने पढ़ लिया उसके बाद हम, अब ये कल्क वगैरह तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन खाने के बारे में उन्होंने जो परम पूज्य गुरुदेव ने जो टेक्निक्स बताए, तो एक टेक्निक हमारे मन में हमेशा याद रखना है कि हमारा सोचने का ढंग जैसा खाते हैं वैसे बनता है। ये फॉर्मूला याद रखना है, जैसा अन्न वैसा मन। तो ये सोचिए आप लोग, क्योंकि वही खाना एक को एक जैसा इफेक्ट करता है दूसरे। तो इसमें एक क्या कहते हैं उसको, अंधविश्वास नहीं कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, कठोर मान्यता कि यही खाते हैं तो ये मन बनेगा, ऐसा नहीं। एक के लिए वो एक तरह से मैं समझा सका मेरा भाव? तो आप जो खाते हैं आपको कैसे बदलता है वो आप ही को मालूम होगा। तो कहाँ वो बात सोच रहे हैं, आजकल के डॉक्टर्स भी ये नहीं बात समझते कि आप जैसे खाते हैं वैसे आपका मन बनता है। तो आजकल आध्यात्मिकता के बारे में सोच इसलिए नहीं पा रहे हैं कि आध्यात्मिकता को बढ़ाने वाला खाना आपको नहीं पता है। तो 3 चीज गुरुजी हमेशा कहा करते थे, उगती हुई दाने, स्प्राउटेड, समझ गए ना, स्प्राउटेड फूड, आध्यात्मिकता की ओर जाने का मन कराएगी। और वे जो डॉक्टर हैं जो खाने के बारे में जानते हैं, वो कहते हैं इट गिव्स वाइटैलिटी, जीवनी शक्ति बढ़ाते हैं। और कौन सा स्प्राउट्स कैसे धाना है वो जरा, वो साइकोलॉजिकल किताबों में, और गुरुजी की संजीवनी विद्या एक है, साधना कराते थे 9 दिनों का, तो उसमें आपको मिल जाएगा। तो पहली बात, आपको खाने में बदलाव, स्प्राउट्स निश्चित रूप से हमारे जीवन में होना है।
बुक नंबर 16 संजीवनी विद्या,
बुक नंबर 16, तो वही मैं कह रहा हूँ। तो गुरु जी ने सब दे दिया उन किताबों में, मैं कुछ भी बोलूंगा वहां मिलेगा, और उसका डिटेल्स भी मिलेंगे आपको। दूसरी चीज नट्स, नट्स ही कहते हैं ना, जैसे मूंगफली और नट्स में एक बात याद रखिए कि अमेरिका का एक, हमें कभी कभी लगता है वो गुरुजी का ही अंश होगा, क्योंकि उन्होंने जो काम किया वो गुरुजी का एक काम में बहुत सहायता देती है, एडगर केसी, उनकी किताबें आप जरूर पढ़िए। उन्होंने कहा ए ऑलमंड ए डे कीप्स कैंसर अवे। तो यहां मैं कैंसर के बारे में, रोग के बारे में नहीं बता रहा, हमारे सेल्स जो है ना, हमारा पूरा शरीर तो करोड़ों सेल से बने, और उन सेलों का जिस जिस ऑर्गन के, जिस जिस सिस्टम के वो सेल हैं, अगर वो करेक्टली नहीं करते तो कैंसर कहते हैं, है ना? तो हर सेल हमारे शरीर में निश्चित रूप से अपना काम करें, उसके लिए खाने के लिए आलमंड्स, मतलब मैं आलमंड्स ही नहीं, क्या कहते हैं, बादाम, इन सबको मिला के क्या कहते हैं इस तरह की चीजों को, ड्राई फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स. तो स्प्राउट्स एंड ड्राई फ्रूट्स मस्ट बिकम ए पार्ट ऑफ योर फूड. स्प्राउट्स आपको जीवनी शक्ति देती, वाइटैलिटी. कई काम हम इसलिए नहीं कर पाते हैं कि हम कहते हैं कि हमने इतना दिपूरा, हमने सम सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, माय फ्रेंड्स टेल इट, आई एम सो बिजी फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग एंड व्हेन आई कम बैक आई एम नॉट टॉकिंग पीपल फ्रॉम हियर इन बैंगलोर. आई हैव ए लॉट ऑफ फ्रेंड्स इन सॉफ्ट. जैसे हम सुबह 7 बजे चले जाते हैं तो रात को 8-9 बज जाता है, तो मैं कहाँ काम करूं, तो हम कहते ठीक है चलो पिक्चर देखते हैं, और तुरंत तैयार है जब. तो हमने कहा अभी तो तुम कह रहे हो हम कुछ नहीं कर पाते और पिक्चर के लिए तैयार. तो जीवनी शक्ति की एक खूबी है ना, जो तुमको अच्छा लगता है उसमें ऑटोमेटिकली जीवनी शक्ति बढ़ती है, ऑटोमेटिकली तुम वो काम कर सकते हो. ये मनस्थिति बदले वाली बात. तो अभी कैसे बदलता मनस्थिति, अपना रुचि बढ़ाओ उसके लिए. अब जैसे बच्चों को हम जैसे अन्नप्राशन कराते हैं, तो एक्चुअली संस्कारों के बारे में भी मैं 5 मिनट बता के खत्म कर दूंगा, 9:45 बजे रात. मैं समय देख रहा हूँ, ये मत सोचो कि हम बातें चल रहे हैं. ओके 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 ओके. ठीक है ठीक है. तो ये जीवनी शक्ति, एनी प्रॉब्लम इन फिजिकल लाइफ, अगर आपको सोचने का ढंग, याददाश्त बढ़ाना हो, योर वाइटैलिटी बढ़ाना हो. अब बच्चों के बारे में बात आ रही है इसलिए मैं बता रहा हूँ, जिनको कई लोग आते कहते हैं हमें बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, और कई सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को ये प्रॉब्लम है कि इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोजर की वजह से कुछ, इट सीम्स दैट हैव बीन कन्फर्म्ड ऑल्सो दैट द एक्सपोजर टू दिस वो बच्चों की कमी करती है. तो स्प्राउट्स विल सॉल्व इट. स्प्राउट्स खाना है, किसी के भी साथ मिला के खा जाओ. और दूसरा हमने कहा बादाम, और तीसरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है पानी. हम यह भूल जाते हैं कि जीवनी शक्ति के लिए पानी बहुत जरूरी है. किसी भी अगर सीड को भूमि में डाल के अगर तुमको उगाना है तो बिना पानी को उगा के दिखाओ, और कम पानी होगी तब भी नहीं उगेगी. तो कितना पानी चाहिए, तो दोस्त हु नो अबाउट द बायोकेमिस्ट्री, दे से अबाउट 2.5 liters ऑफ वाटर पर डे इज रिक्वायर्ड फॉर द सोल्यूशन. सो दैट शुड बी अवर कोटा बिटवीन 2 and 2.5 liters इन सम, इन आई डोंट नो हियर व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट. लेकिन आंध्रा में एक प्राकृतिक चिकित्सा है, कहते हैं कि 5 liter पानी पियो पर डे, वो आती हो गया. डोंट गिव नेम्स, यू ऑलवेज रिमेंबर इट. You think I don't know who's told it? I never give the names because it is his way of thinking and maybe he's right. I'm not blaming anybody, but I am adding my common sense that anything excess, I think the kidney will be pressurized. I think so. And I have asked some doctors and they said, yes, it is possible. But what he, do you know what he said? Pahle 5 liter peene to do, tab na pata chale. असर पड़े कि नहीं. लेकिन हम लोगों ने खास तौर से जब ठंडे वातावरण में हम पीना कम कर देते हैं, तो गायत्री साधना में पूज्य गुरुदेव ने बड़ी खूबी से उसको जोड़ा है, अर्घ्य प्रदान. भले ही आप आधा गिलास पानी चढ़ाते हो, अगर 24 लाख आदमी, हमारे तो 9 करोड़ परिवार है, तो 9 करोड़ आधा गिलास सफिशियंट पानी टू अर्थ, इट विल डू दैट. ही सी हिज ब्रिलियंस ऑफ गिविंग एन एडवाइस. That is where, whenever I talk about him, sometimes I feel excited. Such a great man, and we are having a link with him. With what right? With what ability? Do we deserve it? Then I think he knows better. If he says we are his men, he should be knowing more than us. At least in this way, let us be happy. तो तीन चीजों के बारे में मनस्थिति को बदलने के लिए, sprouts, fruits and dry fruits. पानी 2 liter कम से कम पीने की आदत डाल लीजिए, तो मनस्थिति बदलने के लिए आपको काफी बेसिस मिलेगी. लेकिन मन तो कई विचार आते रहते हैं, तो किसका निर्णय लेना, वो बुद्धि निर्णय लेता है. तो बुद्धि निर्णय के लिए एक ही वाइब्रेशन है, गायत्री मंत्र. बिना गायत्री मंत्र के सद्बुद्धि की ओर हम नहीं जा सकते। अगर इंग्लिश में कोई किताब आपको पढ़ना हो तो एबीसीडी तो सीखना ही है, ग्रामर तो सीखना ही है, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन तो सीखना ही है। तीन चीज हम बता रहे हैं और गायत्री मंत्र में वो तीन चीज कैसे आते हैं वो भी मैं बताऊंगा। अल्फाबेट सीखना है, ग्रामर सीखना है और उसके बाद किताबें पढ़ना, कंस्ट्रक्शन सेंटेंस। तो गायत्री मंत्र बुद्धि के बारे में ये तीन चीज देती है, द अल्फाबेट्स ऑफ हाउ टू डेवलप बुद्धि, बुद्धि को डेवलप करने का व्याकरण देती है, ग्रामर, चूंकि अगर ग्रामर का करेक्ट उपयोग नहीं हुआ तो अर्ध का अनर्थ हो जाता है। जैसे गुरुजी कहा करते थे, नोवेयर इज अ रियल साइंस, नोवेयर एन वो नो वेयर, नहीं कहीं भी। तो हम जरा कंफ्यूज हो गए कि नोवेयर में वैज्ञानिकता कहा है, तो कहा जस्ट W को जरा नजदीक कर दो, नाउ हियर, समझिए ना। तो नोवेयर अगर छप गया नाउ हियर के बदले, तो जिसको अभी पाना हो वो कभी नहीं पाओगे। तो मैं बुद्धि के बारे में बता रहा था, गायत्री मंत्र का अल्फाबेट्स, क्या अल्फाबेट्स है, सूरज की किरणें, तो पूरा बुद्धि सूरज की किरणों के ऊपर आधारित है। और अगर आप रामायण और महाभारत अगर आप देखें तो रावण को तभी मारा जा सका जब आदित्य हृदय जाना गया। रामायण तो शायद यहां नहीं बोलना चाहिए क्योंकि यहां कई लोग को रामायण के बारे में पता नहीं है, तो ये मालूम है आदित्य हृदय, वेरी गुड, देन आई थिंक ऑल ऑफ यू नो आई एम टॉकिंग। जब राम रावण का युद्ध, आई एम नॉट, डोंट थिंक दैट आई एम ब्लेमिंग यू, जस्ट द एटमोसफेयर हियर इज दैट वी हैव फॉरगॉटन अबाउट रामायण एंड महाभारत। तो आदित्य हृदय, आदित्य हृदय मतलब सूरज का हृदय, सूरज का हृदय का दूसरा नाम सविता है। तो जब हम कहते हैं गायत्री मंत्र पढ़ते हैं तो वो सूर्य का मंत्र नहीं है, वो सविता का मंत्र है। गुरुजी हमेशा कहा करते थे, तुम याद रखो सविता के बारे में बता रहा हूं, सूरज के बारे में, सूरज के बारे में तो तुम जानते हो, दिख ही रहा है, लेकिन सूरज की बुद्धि वो सविता। तो अल्फाबेट्स तो शरीर है, सूरज की किरणें, अगर उसका हृदय पकड़ पाए, सूरज के किरणों का हृदय अगर आपने पढ़ पाया तो आपको आश्चर्य होगा, वो भी 24 श्लोक है, आदित्य हृदय भी 24 श्लोक है। अब जब महाभारत में आते हैं तो सूर्य का ही चमत्कार मिलता है, जब पांडव लोग कौरवों से जुए में हारने के बाद जब वो गए जंगल में, तो कई समाज के लोग भी कहे कि हम यहां नहीं रह सकते, हम आपके साथ आते, तो उन्होंने कहा मैं कहां खिला पाऊंगा तुमको, यहां तो मैं राजा था तो कुछ खिला सकता हूं, तुम जंगल में आओगे तो मैं कहां खाऊंगा। तो वो धौम्य ऋषि एक थे, तो वो सूरज से एक अक्षय पात्र लिया, ये जरा ढंग से याद रखिए, अगर आपको सूरज की किरणों का अक्षय पात्र मिले तो आपका रेगुलर खाना भी आप सबको खिला सकते। खाना खाने के लिए, खाना पैदा करने के लिए आपको नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं, अक्षय पात्र। और ये हर मिस्टिक, हर रिलीजियस लीडर के लाइफ में ये निश्चित आपको एक घटना कहीं ना कहीं मिलेगी जहां उसने थोड़े से खाने को मल्टीप्लाई किया। ऐसा कोई भी घटना किसी भी योगी या सेंट, या मैं जब मिस्टिक करता हूं तो मेरा मन है कि दूसरे धर्मों के जो, निश्चित रूप से उनके जीवन में ऐसी घटनाएं आपको मिलती जहां थोड़ा सा खाना को उन्होंने बहुत किया। जैसे क्रिस्ट के बारे में कहते हैं कि कुछ फिश और कुछ खाना 5000 लोगों को खिलाया, अच्छे पात्र सूरज की किरणों से। शमंतक मणि, जिसे हम पारस मणि भी कह सकते हैं, लगभग 21 किलो सोना वो देता था, वो भी सूरज की उपासना से आया। तो तत्सवितुर्वरेण्यम, ये अल्फाबेट्स हैं। ग्रामर क्या है, इस तरह के आपका अंधकार दूर करे, मन का अंधकार, भर्गो देवस्य धीमहि, तो हमारा अंधकार जाए और प्रकाश आए, इसका मतलब है। तो अभी हमने नो वेयर से नो हियर, ये तो ग्रामर का ही टेढ़ा है ना, कि अक्षर को यहां से वहां बदल दिया आपने, ज्ञान आ गया, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, आचरण में भी आना है, ज्ञान रहने से क्या फायदा है। लेकिन आचरण अकेले आप नहीं कर सकते, यू हैव टू डू इट टुगेदर, द एंटायर ह्यूमैनिटी इज डू इट टुगेदर। आपको मालूम होना चाहिए भगवान के लिए केवल आप ही बच्चे नहीं है, संपूर्ण मानव जाति भगवान का बच्चा है। गुरु जी तो एक शब्द और बताते हैं कि मानव जाति को तो पहला दो लाइन ठीक है गुरु प्रार्थना में, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ब्रह्मा मतलब क्रिएटिव, विष्णु मतलब ऑर्गेनाइजेशन, महेश मतलब डिसॉल्विंग। लेकिन उसके बाद का श्लोक भी भगवान का है, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम यत पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ये जो जीवनी है, ये जो सृष्टि है, ये केवल मानवों के लिए थोड़ा ना बना, ह्यूमैनिटी के लिए थोड़ा ना बना है, सबके लिए बना है। और वो चाहे जीवित हो या मिनरल हो, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चरा अचरम दैट विच इज मोबाइल एंड विच इज नॉट मोबाइल, उसमें जो ये भगवान का पद है, मतलब कॉन्शियसनेस है, उनकी अंश है, तत्पदम दर्शितम येन, जो हमको ये दिखा सका उस गुरु को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव ये बहुत 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 खूबी से चार किताबों में दिखाते हैं। कौन से चार किताब? क्रांतिधर्मी साहित्य में सबसे पहला वो बताते हैं जीवन साधना का स्वर्णिम सूत्र, और उसके बाद जीवन देवता का साधना आराधना। इन दो किताबों में अभी जो मैंने बताया सब वहां है। तो ये परम पूज्य गुरुदेव के बारे में मैंने आज जो बताया वो हमेशा याद रखिए कि दो कदम के बारे में मैंने बताया, एक गायत्री एक यज्ञ। गायत्री का मतलब वह ज्ञान जो हमारे दिमाग में धारण किया और जिसको मैं उपयोग करता हूं, तभी वह गायत्री हुआ। ज्ञान है लेकिन अगर आपने आचरण नहीं किया तो वह गायत्री नहीं हुआ, है ना। और दूसरा यज्ञ, यज्ञ का मतलब हमने कहा यह नहीं कि आपने आहुति दिया वही यज्ञ है। तीन दान आपने दे दिया, प्रतिभा दान अंश दान और समय दान, तो वो यज्ञ हो गया। तो ये जो विद्महे धीमहि प्रचोदयात का जो ज्ञान है, इसको हम समाज को देना शुरू किए। तो गुरु जी कहते कितना तुम समय देते हो जरूरी नहीं, रेगुलरिटी जरूरी है। तो हमेशा एक ही उदाहरण कहते हैं कि तेज भागने वाले खरगोश से तो अच्छा है अत्यंत धीमी चाल से चलने वाला कछुआ, कछुआ जरूर जीतेगा, और तेज दौड़ने खरगोश तो हमेशा हारेगा। तो उनका कहने का यह मतलब नहीं कि तुम कम करो, वो ये कहना चाहते हैं कि तुम अपना एनालिसिस करो, अपना विश्लेषण करो, आप सप्ताह में कितना दे सकते हैं, सप्ताह में एक घंटा दे सकते हैं तो, लेकिन बी रेगुलर। आप रोज देना चाहते हैं ठीक है, 5 मिनट दो 10 मिनट दो, लेकिन रेगुलर, द रेगुलरिटी इज इंपॉर्टेंट। क्योंकि जो इम्तहान लिखते हैं वो 10 मिनट का समय का कीमत जानते हैं, अगर वो 10 मिनट मिल जाए तो सेकंड क्लास से फर्स्ट क्लास हो जाएगा वो। 4 आंसर लिखना है, 3 ही लिख पाया उस समय में, अगर उसको 10 मिनट मिल गया तो चौथा भी लिख देगा, तो सेकंड क्लास से फर्स्ट क्लास हो जाएगा। तो आप यह मत समझिए कि 10 मिनट में क्या होने वाला है, 10 मिनट में कुछ नहीं होने वाला, लेकिन 10 मिनट का अगर आप सदुपयोग कर सके हर दिन तो दैट इज मोर देन इनफ। 10 मिनट में तो एक पेज तो पढ़ ही सकते हैं क्रांति धर्मी साहित्य का। नो नो, आई एम टॉकिंग अबाउट द अल्फाबेट, लेट मी फिनिश इट द लास्ट वन। आई रिमेंबर व्हाट आई एम टेलिंग बट आई हैव टू एक्सप्लेन व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू एंड द प्रैक्टिकल टिप्स ऑल्सो। सो फर्स्ट वन इज द अल्फाबेट्स ऑफ द सन रेज। सनरेज के अल्फाबेट्स में एक विचित्रता आपको याद रखना है कि चूंकि यह प्रयोगशाला है और आध्यात्मिक विज्ञान कहता है कि यह पिंडांड में भी ब्रह्मांड है, तो जहां सूरज है तो हमारे अंदर भी सूरज होना है, चंद्रमा है तो हमारे अंदर भी चंद्रमा होना है, अग्नि है तो हमारे अंदर भी अग्नि। तीन ही चीज के बारे में आज बताऊंगा। तो हमारे प्रयोगशाला में सूरज का स्थान हृदय है, मन का स्थान ब्रेन है। चंद्रमा मनसो जाता है, वेद भी कहता है कि चंद्रमा मन बना। अग्नि हम वैश्वानर बन के, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रितः प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम। तो अग्नि सूर्य और पृथ्वी हमारा होल शरीर। तो ये अल्फाबेट के बारे में बता रहा हूं कि इसमें तुमको साधना, बाहर नहीं, लेकिन इसमें साधने के लिए ग्रुप बहुत अच्छा काम करेगा। तो क्या काम करना है, तो आपकी प्रतिभा जिस ओर लग सके उस ओर लगाए। अगर आप एक्टर हैं, पॉलिटिशियन हैं, बिजनेसमैन हैं, उस एंगल में लगाए, आपकी टैलेंट उसमें है, तो उस परिधि के लोग आपको परिचित है तो उनसे धीरे धीरे बातचीत करिए। और उसके लिए क्या करना है, थोड़ा सा अंशदान और थोड़ा सा प्रतिभादान। जब आप यह दे के ग्रुप करेंगे तो तीसरा चरण होगा सामूहिक, धियो यो न प्रचोदयात। एम ए क्लियर? अल्फाबेट्स, सूर्य की किरणें और पानी, आपका जैसा उपयोग करना हो वह ग्रामर, आपका ग्रामर दूसरा है, दूसरे का आदमी का ग्रामर दूसरा है। तीसरा, समूह बनाए। तो एक किस तरह का समूह बनाना है और क्या करना है अपना प्रतिभा को डेवलप करने के लिए, पहले चार किताबों में उन्होंने दिया है। वो एक है 21वीं सदी उज्ज्वल भविष्य, बनाम उज्ज्वल भविष्य, और उसके बाद युगेच्छा प्रतिभा परिष्कार, अपने आप को कैसे परिष्कार करें। तो ये दोनों चीज जब आपने यह समझ लिया कि 21वीं सदी उज्ज्वल भविष्य है, ये विद्महे हुआ, आपने जान लिया। अब जब आपका प्रतिभा प्रखर बनेगा तो सबको जान बता सकेंगे, सब उस लाइन में आ जाए। ठीक है, तो एक सूचना है जो मैं कहना चाहता था अबाउट गायत्री एंड यज्ञा। इज इट क्लियर? गायत्री का ये मतलब, तो फिर लोग कहेंगे कि ये यज्ञ करना छोड़ दें, छोड़िए मत। यह यज्ञ एक कर्म कांड है जहां अंशदान, समयदान, प्रतिभादान किस तरह करना है उसका वातावरण वो निर्मित करेगा। तो वातावरण भी जरूरी है। तो गुरुजी हमेशा ये करते थे कि अगर सप्ताह में अगर आप एक गायत्री यज्ञ भी आप करते रहे तो हमारा ही काम कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा काम है क्योंकि वातावरण बदलेगा। तो कई लोग पूछते हैं हमसे कि यज्ञ करने से वातावरण बदल जाएगा। तो मिर्च होता है ना, सूखा मिर्च, तुम चबाओ तो क्या होगा, तुम खासोगे। अब यह मत मानना कि तुमने क्या सूखा मिर्च खाया कि अभी खास रहे हो, अभी मैंने ये मत कहना अभी नहीं खाया। लेकिन अगर वो सूखा मिर्च यज्ञ में डालो तो कौन, जो ये भी नहीं जानते कि तुम यज्ञ कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। कोई जरूरी नहीं कि लोग जाने कि तुम यज्ञ कर रहे हो, उसका असर पड़ेगा, निश्चित रूप से पड़ेगा। तो अगर एक एक संकल्प भी आपके अंदर आ गया कि कम से कम सप्ताह में एक बार मैं यज्ञ करूंगा, तो अपने गुरुदेव के काम के लिए वातावरण निर्मित करने के लिए एक बहुत बड़ा अस्त्र प्रयोग कर रहे हैं। इसको आप याद करें, हमारे प्राचीन भारत में तो हर इच्छा के लिए एक यज्ञ होता था, पुत्र कामेष्टि यज्ञ, वरुणास्त्र, आग्नेयास्त्र, सब यज्ञ के माध्यम से होते थे। तो गुरुजी ने उसका एक मॉडर्नाइज्ड वर्शन हम लोगों को दिया जो उससे ज्यादा प्रभावशाली है पुराने यज्ञों से। ये जरा आप समझ लें, पुराने जमाने का जो बड़ा रेडियो होते थे ना, हमारे दादाजी जब काम करते थे तो वो रेडियो रखते थे, तो एक जनरेटर रख के क्या क्या पता नहीं वाल्व्स और सब रहते थे। और आज का रेडियो छोटा भी है और उस समय से भी अच्छा है। तो गुरुजी ने अगर यज्ञ का एक दिया तो ये हमेशा आपको मन में ये समर्पण भाव होना चाहिए कि ये यज्ञ बहुत बहुत प्रभावी है। तो ये यज्ञ किस तरह का प्रभाव दिखाएगा कि लोगों जिनमें सत्ता हो तो तीन तरह के दान देना शुरू कर देंगे, प्रतिभादान और समयदान। तो अगर हम दे सकें या ना दे सकें, यज्ञ तो जरूर करें। तो गुरुजी ने उसका एक और मॉडिफिकेशन किया दीप यज्ञ, शायद यहाँ के लिए, चूंकि हम यहाँ देखते हैं वो छोटा सा, उससे बचने के लिए तो दीप यज्ञ बेटर है। तो गुरुजी नोज एवरीथिंग, यू नो व्हाट ए ग्रेट मैन यू आर रिलेटेड, एंड यू नो व्हाट एवर ही थिंक्स इन हिज 20 बुक्स, द ओनली थिंग यू हैव टू चेंज इज यू शिफ्ट फ्रॉम योर माइंड टू इंटेलेक्ट बुद्धि, एंड फ्रॉम इंटेलेक्ट लेट योर अहंकार बिकम ए समर्पित एजेंसी टू परम पूज्य गुरुदेव। जय गुरुदेव। यस,
आप कंटिन्यूअसली जो कह रहे थे फिजिकल इमोशनल, फिजिकल के लिए आपने कहा था पारसमणि एंड इमोशनल के लिए कल्पवृक्ष, व्हाट अबाउट काजल,
व्हाट इज रिमेनिंग, कामधेनु। लेकिन इनका उपयोग कैसे करना है वो गुरुजी ने किताबों में दिया है, गायत्री मंत्र का, गायत्री महाविज्ञान में तो बहुत साफ ही दिया है, और यहाँ एक किताब है आदि शक्ति गायत्री, क्या नाम है,
आदि शक्ति गायत्री समर्थ
साधना, हाँ उसमें दिया उन्होंने आदि शक्ति गायत्री में कल्पवृक्ष पारसमणि और कामधेनु के रूप में उन्होंने कैसे बदला, अपने ऊपर उन्होंने किस तरह लागू किया, हमने इस तरह किया, तुम लोग भी ऐसे ही करो। तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो उन 20 किताबों में नहीं पढ़ सकते हो, किताब गलत बात है, हमको यहाँ के भाषा में तो कहना फ्लायर्स। मतलब फ्लायर्स का मेरा मतलब ये किताबें एक से दूसरे की ओर आप उड़ाए, पढ़े और दूसरों को पढ़ाए, इस भाव से मैं कह रहा हूँ, और स्मॉल बुक्स। एनी मोर क्वेश्चंस, आई हैव फिनिश्ड।
मनोबुद्धि के बारे में आपने बताया,
हाँ
चित्त और अहंकार के बारे में आप थोड़ा बता दीजिए,
छोड़ा बता दें, हाँ हाँ जरूर। ये प्रयोगशाला जो बना इन चारों के सहारे बनता है, चित्त अहंकार बुद्धि और मन। सो इनको आप इस तरह सोचिए कि ये चार तरह के शक्ति धाराएं, चार शक्ति धाराएं, ये चार शक्ति धाराएं स्पष्ट रूप से भगवद गीता में कहा गया है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्ट्वा गुण कर्म विभागशः। हम तो उसको इस तरह कर दिए कि ये तो इस कास्ट का है, ये उस कास्ट का, उससे नहीं है, गुण कर्म से बनता है। जिस तरह हम आजकल के कास्ट के बारे में सोचते हैं तो विश्वामित्र को तो ब्राह्मण होना ही नहीं चाहिए, लेकिन जो ब्राह्मण मंत्र जपते हैं वो विश्वामित्र का ही दृष्टा है, अगर थोड़ा सा दिमाग हो तो वही समझ में आ जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि चित्त अहंकार बुद्धि और मन ये चार किरणें हैं, चार सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो ये चार सोर्सेस ऑफ एनर्जी किस तरह ग्रो होता है, मां के पेट में ग्रो होता है। तो मां के पेट में ग्रो होने के पहले एक संस्कार हम लोगों को करना पड़ता था जो आजकल लोग भूल गए, गर्भाधान संस्कार, वो बिल्कुल भूल गए। बिना उस संस्कार का डेट किए शादी ही नहीं होता था एक जमाने में, तो आजकल तो इस तरह उसका प्रामुख्यता इतना भूल गए कि लोग भूल ही गए कि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बर्थ के लिए पति पत्नी बनते थे, इसलिए नहीं बनते थे कि शादी करते हैं कि हम ये बात को भूल जाएंगे। तो गर्भाधान संस्कार के समय जो शक्ति अंदर प्रवेश करती है उसको चित्त कहते हैं। इसी शक्ति को जो नए नए चीज बनाते हैं उसको चित्त शक्ति कहा गया पतंजलि योग सूत्र में, और उन्होंने कहा कि पूरा योग का मतलब ही है चित्त वृत्ति निरोध, मन निरोध नहीं। लोगों को चूंकि चित्त के बारे में नहीं मालूम उस एनर्जी के बारे में, तो ट्रांसलेट कर देते हैं माइंड कंट्रोल, नो इट हैज नथिंग टू डू विथ माइंड, इट हैज टू डू विथ चित्ता। नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज चित्ता, द रियल वाइटल एनर्जी व्हिच अलाउज समथिंग टू ग्रो, राइट, एंड नाउ इट एंटर्स द मदर्स वूम्ब एंड नाउ इट विल डिसाइड आई वॉन्ट टू बिकम दिस because of many past lives experiences. I want to be a male or a female, I want to be so height, I want to have these limitations, I have to get this. Ye ahankar hua, I want this, I want this, I want this. And this combination Again, Gurudev says that there are 24 points in the genes, 23 from the mother and 23. And about this nomenclature, about the numbers, let us not fight. If it is not for 23, it is 22 or 24. It is around that name. So this gives you the egoism, the ahankar. Now ahankar is clear. The energy which wants to live and the energy which has decided, I want to be this. I am that I am. That is what Descartes said. My who? Isliye my who? Iske liye koi proof chahiye aapko? It's swayam siddh hai. My who? Chuki my who? To chit अहंकार तो स्टार्ट होता है, लेकिन जब वो बाहर आता है तो बाहर का वातावरण प्रभावित करना शुरू कर देते हैं बच्चे को, तो मन डेवलप होता है। तो ये स्टेप्स भी याद रखिए, पिता के द्वारा चित्त, माँ के द्वारा अहंकार, समाज के द्वारा, वातावरण के द्वारा मन। अब चित्त और अहंकार इस मन से प्राप्त डेटा को, मैं ये करूंगा मैं ये नहीं करूंगा, ये डिसीजन मेकिंग बुद्धि, क्लियर। बट मॉडर्न साइंटिस्ट पैरासाइकोलॉजिस्ट हैव गिवन दिस एज बीटा अल्फा थीटा डेल्टा एस्टरडे आई टोल्ड यू इट इज ओनली अ चेंज इन द नेम बट द एस्पेक्ट्स आर सेम ओके इट्स सो हाँ No. अहंकार तो पैदा होने के पहले आ गया आपने, बढ़ने वाला कुछ नहीं, बढ़ता है आपका मन का नॉलेज और बुद्धि, अहंकार बढ़ने वाला नहीं है। समझ में आ गया? उस एनर्जी के बारे में बता रहा हूं। अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी को आप समझ लीजिए, अहंकार समझ लीजिए, तो यहां टीवी के रूप में उसका अहंकार प्रकटित हो रहा है, फ्रिज में जो है उसके रूप में, हीटर में हीटर के रूप में, तो अहंकार नहीं बदल रहा, बुद्धि बदल रही है। बुद्धि का मतलब डिसीजन, इलेक्ट्रिसिटी को मैं इस तरह उपयोग करूंगा। तो लोगों को अहंकार के बारे में जो कि स्पष्ट आइडिया नहीं, इसीलिए गुरुजी का पहला किताब था मैं कौन हूं, 3200 किताबों में पहला किताब हुई, गजब के व्यक्ति हूं जो भी लिखते कहां कहां से शुरू करते। तो अहंकार नहीं, मन और बुद्धि बढ़ता है, डेटा बढ़ता जाता है और आपका डिसीजन मेकिंग एबिलिटी जाहिर है बढ़ना ही होगा। अगर डेटा बढ़ेगा तो बुद्धि बढ़ेगा, उसको हम अहंकार समझते हैं, अहंकार वो नहीं। अंतर समझ में आ गया ना?
अहंकार को बुद्धि से गलाना है कि
बुद्धि से, बुद्धि से, बुद्धि से। लेकिन अगर चित्त के द्वारा भी आप गला सकते हैं अगर योग करें तो। वो टॉपिक मैं सोच रहा था आज शुरू करें, लेकिन सच ही विस्तृत फील्ड है। यू कैन, you have to learn so much, so much, so much. Most welcome, most. I always tell you about this work, you utilize me as you want to utilize it, but this time I'm just asking it because I'm a bit weak, that's all. If not, my life is dedicated for him, for this work. You use it as you want. But just this time, because I have come without any plan, uto adarniya prano पांड्या जी का चमत्कार है कि हम ऑलमोस्ट आई वॉज इन डेथ बेड फॉर वन ईयर एंड इवन द डे बिफोर आई एम कमिंग ही वॉज देयर, ही सॉ द कंडीशन, अनेबल टू मूव फ्रॉम द बेड। तो हम फोन कर किया प्रणव पांड्या, तो कहा मैं हूं ना, आ जाओ, चमत्कार ये। अभी भी वहां के लोग विश्वास नहीं करते कि मैं बोल रहा हूं, वो कहते ये झूठ बोलता है, चूंकि हम परेशान हो जाएंगे इसलिए।
ये सच है कि वो सच है,
दोनों सच है, दोनों सच है। लेकिन यह समर्पण कि जब आदरणीय प्रणव भैया ने कहा तो निसंकोच में चलाया, लेकिन हालत एक साल से वैसा था। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं ना कि जरा मैं कुछ कमजोरी दिखाता हूं, ये वो है, तो उस स्थिति से मैं उठ के आया हूं, तो जरा सा आप अब की बार जब आओ ना, वो तो है। लेकिन मैं इसलिए इस सबको बता रहा हूं ना कि चमत्कार अगर आपको देखना हो तो मैं खुद एक प्रूफ हूं कि जो एक साल से डेथ की बेड पे था, लोगों ने देखा है ये बार। और मैं आके आपको बता रहा हूं कि गायत्री की महिमा, तो गायत्री की महिमा तो आपको यही एग्जाम्पल आपको पता चलता है कि अगर उनका काम करना शुरू करो तो चमत्कार होने शुरू होते। हाँ, 1.5 घंटा, इट वॉज ए रिस्क, आई वॉज एक्सपेरिमेंटिंग एक्चुअली। ओके, ऐसे तो हजारों है,
सभी बढ़िया ही होंगे,
जाहिर है सब चमत्कार ही चमत्कार है। ऐसा हुआ था कि हमने पीएचडी थीसिस सबमिट किया, पीएचडी थीसिस सबमिट करने के बाद 2-3-4 महीना लगता है, क्योंकि फॉरेन से भी एक्सपर्ट्स का ओपिनियन आना है और लोकल इंडिया यूनिवर्सिटी से भी एक प्रोफेसर से कि ये ठीक है। तो मैं गया वहाँ शांति कुंज और हमने कहा, तो हमने पीएचडी कर दिया, मैं यहीं रहूँगा। तो कहा तुमको यहाँ नहीं रहना है, हमने कहा ना हमको धकेल दिया आंध्र प्रदेश। तो मुझको बड़ा गुस्सा आया, उस समय बच्चा ही तो था, अब को हमको अचरज होता है कि गुरुजी पे हम गुस्सा कर सके, लेकिन परिवार के ही लोगों के पर तो गुस्सा करते हैं। तो हम रहना चाहते हैं शांति कुंज में और ये हमें भगा दे रहे। तो हमने कहा ठीक है मैं जा रहा हूँ, 4-5 महीना लगता है पीएचडी मिलने में, तो मैं आऊंगा तो 6 महीने बाद आऊंगा। उन्होंने कहा नहीं, आपको 21वें दिन तुम यही रहोगे हरिद्वार। तो उस समय तो ना प्लेन थे, ना इतना तेज ट्रेन थे, ना इतना औकात था कि हम प्लेन से जा सके वहां, तब तो प्लेन ही नहीं थे, वो दूसरी बात है, ये 71-72 की बात है, तब कहां प्लेन थे। तो गुरुजी ने कहा 21 दिन, और हमारा कैलकुलेशन जिस तरह यूनिवर्सिटी में काम चलता है, अगर आपने पीएचडी सबमिट किया तो 4-5 महीने तो निश्चित रूप से लगते हैं, कभी कभी ज्यादा होता है, उससे कम तो नहीं होता है। तो हमारे जाने के बाद 15वें दिन यूनिवर्सिटी से टेलीग्राम आया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, कि यू हैव टू अटेंड द पीएचडी इंटरव्यू, नॉट इंटरव्यू, व्हाट वी कॉल, वाइव हाउस, बिकॉज यूअर परमिशन फ्रॉम द फॉरन कंट्री हैज बीन एक्सेप्टेड द थीसिस, देर फोर वी हैव टेलीग्राम टू द इंडियन प्रोफेसर ऑल्सो टू गिव ए पॉजिटिव रेस्पॉन्स बिकॉज द फॉरनर हैज सेड ओके। एंड द मैन हु वेंट थ्रू माई थीसिस इज ए नोबेल प्राइज विनर इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, डेविड ग्रहम, एंड नेचुरली व्हेन ही सेज यस, हु कैन से नो। So the vice chancellor telegrammed me, and luckily I could get the telegram in time. तो हम दौड़ के गए, 3 दिन लगता था, तो खैर गया। और वहां से जब वहां का जो यूनिवर्सिटी से हमारे मित्र है उनसे सब जेब के, मैं फिर हरिद्वार गया, तो एग्जैक्टली 21वां दिन था, विथ माई पीएचडी डिग्री। Impossible. That's impossible. Yeah. The only plus point. Sabhi kaise?
It takes 4-5 months minimum.
Minimum. That is what I am telling you. Wanted a chamatkar, so this is a chamatkar. लेकिन हमको तब लगा कि गुरुजी किसी भी तरह हमको आंध्रा जान भेजना चाहते थे कि अगर जल्दी पीएचडी नहीं आएगा तो इसी बहाने रुक जाएगा। ये तो हमारा अपना, हम गुरुजी के बारे में मैं क्या बता सकता हूं उन्होंने क्या सोचा, लेकिन चमत्कार ही तो है। और इस तरह के चमत्कार तो अनंत है, अनंत हर जगह, कई जगह हमने देखा। एक तो हेल्थ के बारे में मैं खुद एक एग्जांपल हूं कि भाई जाता हूं आदमी फिर वापस आ गया।
बोला ना एमएससी करते थे तब गए,
डॉक्टर बुलाते थे,
पता होगा कि
अरे बाबा उनका तो, हमें तो लगता है हम सब लोग के आगे आने वाले जन्म भी उनको मालूम है। व्हाट डू यू मीन अबाउट दिस लाइफ, इज अ वेरी ट्रेमेंडस मैन, यू जस्ट कांट अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ स्पिरिचुअलिज्म, बिकॉज आई हैव सीन सो मेनी स्पिरिचुअल जेंट्स इन काशी, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग, आई नो आनंद महिमा वेरी क्लोज, किनाराम बाबा वेरी क्लोज, Devariya Baba, of course I can't say very close, I just know him. And then in Ayodhya there are so many राम के भक्त एंड आई एम वेरी क्लोज टू विद ऑल स्पिरिट एंड आई एम ऑल्सो वेरी एक्टिव इन थियोसॉफिकल सोसाइटी एंड अरविंदो सोसाइटी इवन नाउ आई डू माई वर्क देयर ऑल्सो वॉट दे वॉन्ट दे वॉन्ट अबाउट और इसके भी हमें प्रेरणा मिली गुरु जी के वाक्य से कि थियोसॉफिकल सोसाइटी में मैडम ब्लावेट्स्की ने जो भी लिखा अच्छा रसा सत्य उनके आत्मकथा में लिखा तो गुरु जी का वो रूट्स अगर हम पकड़ना चाहें तो हर पॉलिटिशियन के पीछे हमको तो लगता है अब उनका हाथ है आजकल आजकल हर पॉलिटिशियन के पीछे उनका हाथ है हर एक्टर्स के पीछे कभी कभी कई डायलॉग सिनेमा में हमें तो यहाँ का इंग्लिश सिनेमा तो हमें समझ में भी नहीं आता उच्चारण लेकिन हिंदी और तेलुगु सिनेमा जब सुनते हैं तो हमें तो कई बार लगता है जैसे कुछ कुछ होते ना वाक्य बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे गुरु जी ने लिखवाया है तो बढ़ रहा है लेकिन अगर हम सहयोग कर सके ढंग से अपनी प्रतिभा के अनुसार आपको सोचना है कि हम क्या करेंगे तुम क्या करोगे लेकिन एक प्लान ऑफ एक्शन कि इन 6 महीने में हमको यहां पहुंच जाना है और गुरुजी एक चीज हम बताना चाहते हैं एक लेक्चर उन्होंने दिया जिसको कहते हैं कि देवत्व विकसित करें कालनेमी से बचें जरूर पढ़िए उसको वही प्रेरणा देगी हमको कोई दूसरा तो जहां भी अहंकार जहां भी हम समझते हैं कि फलाने की वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूं वो कालनेमी है उससे बचो तुम मन में क्या सोचते हो फर्क नहीं पड़ता है चाहे जो भी मन से सोचो अगर काम तुम ढंग से करते हो तो ठीक है क्योंकि मन को बदलना जरा मुश्किल है लेकिन काम करते रहना मुश्किल नहीं तो गुरुजी एक उदाहरण दिया करते थे पत्थर फोड़ने वाला एक देवालय बना रहा था तो एक जो पत्थर फोड़ते हुए कहता हमारा तो भाग्य फूट गया दूसरा कहता था चलो ये तो काम मिला परिवार को खाना खिला सकता हूँ और तीसरा बोलता है कि ये तो देवालय बना रहा हूँ कितना खूबी की बात है लेकिन काम तो वही करना है तो अगर हम काम के बारे में और काम के बारे में आपको ये 3200 किताबें वो सब नहीं पढ़नी है वो 20 किताबें काफी नहीं है दैट इज इट इज द इंतहा हो गया आपके ज्ञान की इट इज द सीड और एक सीड जब ग्रो होता है तो हजारों सीड बनते हैं एक फल का सीड अगर आपने बोया तो एक ही सीड थोड़ा ना आएगा उससे फिर हजारों सीड आएंगे इसी तरह इन 20 किताबों से आगे आने वाले इन 5 श्रेणियों के व्यक्तियों को नए नए पॉलिटिशियंस नए नए बिजनेसमैन नए नए साइंटिस्ट नए नए एक्टर्स नए नए लेखक आएंगे तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ बीजों को वितरित करो जहां भी फेंको क्या फर्क पड़ता है ओके जय गुरुदेव हो रहा है बहुत सुंदर तो इसको इसमें भी जोड़ दो जो हमने कहा नट्स और आलमंड्स किस तरह डे टू डे लाइफ में टू द पेशेंट्स और समथिंग इट मे बी एडेड एज अ सजेशन आई डोंट नो वेदर इट इज अलाउड आर नॉट बट यू मे ट्राई इट आई डोंट नो अबाउट द लीगल एंड अदर एस्पेक्ट्स एंड लॉट ऑफ वाटर जय गुरुदेव